जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान बहुत मधुर सुंदर कीर्तन उन्होंने किया, और जब ये कीर्तन करते तो चैतन्य महाप्रभु भावविभोर होकर नृत्य करते। ये तीन भाई थे, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। तो गोविंद घोष को ये चिंता थी कि जब वो देह का त्याग करेंगे तो फिर उनका श्राद्ध कौन करेगा, अंतिम संस्कार कौन करेगा, श्राद्ध विशेष रूप से कौन करेगा। तो गोपीनाथ गोविंद घोष के जो विग्रह थे उनके सपने में आए और कहा कि मैं सब कुछ करूंगा। आज भी गोपीनाथ जी का विग्रह है, वो उनके त्रिभाव महोत्सव मनाते हैं और कलावती सखी के नाम से ये जानी जाती है ब्रजलीला। गोविंद घोष राधा गोविंद के लिए मधुर गीत गाते हैं, गोलोक वृंदावन। उनकी समाधि 64 समाधि इलाके में है। हरे कृष्ण। श्री गोविंद घोष की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। अहम वित्तलोभेण प्रत्याचक्षे कथम द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामिति प्रहरादि कितवो यथा सचाहं वित्तलोभेण प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहरादि कितवो यथा सचाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रारादिः कितवो यथा सचाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राहरादिः कितवो यथा। सः वह पुरुष च भी अहम् मैं हूँ वित्तलोभेन धन के लालच से प्रत्याचक्षे मैं धोखा दूं यहां कहकर अब ना करूं। कथम कैसे द्विजं ब्राह्मण को प्रतिश्रुत्य पहले ही वचन दे चुकने पर ददामि कि मैं दूंगा इति इस प्रकार प्राहारादि। तो महाराज प्रह्लाद के पौत्र के रूप में प्रसिद्ध हों कि तवहा सामान्य ठग यथा जिस तरह अनुवाद और शिल तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। मैं महाराज प्रह्लाद का पौत्र हूं। अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लालच से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूं, मैं किस तरह एक सामान्य वंशक का आचरण कर सकता हूं और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। अनुवाद दोहराइए। मैं महाराज प्रह्लाद का पौत्र हूं। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भूमि दान में दूंगा फिर धन के लालच से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ, मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। बलि महाराज को पहले ही उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसलिए असुर कुल में उत्पन्न होकर भी वह विशुद्ध भक्त थे। उच्च भक्तों की दो कोटियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित रूप से पालन करके भक्त बनते हैं। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वह काल कर्म में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के नियमित विधानों का पालन नहीं किए रहते, किंतु गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ भक्तियां महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियां सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थी। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी पत्नियां स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकी थी। इसी प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर ही उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन सके क्योंकि उन पर गुरु तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है, गुरु कृष्ण पछाड़े पाए भक्ति लता बीज, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय श्लोक संख्या 151। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था और जब ये बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का परम फल भगवान वामन देव के तुरंत प्रकट होने पर मिला, जो ईश्वर का प्रेम है। प्रेमापमर्थो महान। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे और चूंकि वह शुद्ध हो चुके थे अतएव उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा, यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूं, जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लालच से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूं, मैं किस तरह एक सामान्य वंशक का आचरण कर सकता हूं और मैं भी एक ब्राह्मण के प्रति। ओम अज्ञान तिम्रंध्रस्य गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट आविदं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदांतिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्राचार्य ने मना किया बलि महाराज, आमति देता सब कुछ छीन लेगा, ये ब्राह्मण नहीं है केवल, ये स्वयं विष्णु है भगवान, आपका सर्वस्व छीन लेगा ये। तो बलि महाराज को बार बार उनको बताते जा रहे हैं कि नहीं नहीं मत दीजिए दाने, आप किसको दे रहे हैं दान? शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, शुक्राचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, आपस में नहीं बनते। शुक्राचार्य हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, भगवद गीता में भगवान ने कहा है, विभूति है भगवान की। शुक्राचार्य के साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। संकल्प ले रहे थे बलि महाराज और उसी पात्र में जो है शुक्राचार्य प्रवेश कर गए ताकि वो संकल्प ना ले पाए, जल बाहर ना आए। और देखा क्या बात है, ये बाहर नहीं आ रहा है जल। उन्होंने तिनका डाला, वो तिनका जो है शुक्राचार्य की आंखों में जाके लगा और वो एक हाथ से अंधे हो गए। शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। बलि महाराज को जीवित कर दिया था उन्होंने, देवताओं और असुरों का जब संग्राम हुआ था तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवित कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। क्या शक्ति थी उनमें, क्या प्रभाव था। शुक्राचार्य रोक रहे हैं, नहीं मत करिए ऐसा, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जो हमारा करते हैं कि हाँ आप सेवा मत करो, भगवान की सेवा मत करो, मेरी सेवा करो, मैं ही हूं भगवान, लेकिन जो असली भगवान है उनकी सेवा मत करो। क्यों? उनकी सेवा जब करोगे वो सब आपका छीन लेंगे। मैं नहीं छीनूंगा, मैं दूंगा आपको। क्या चाहिए बताइए आप? भौतिक सुविधाएं चाहिए, यश चाहिए, लाभ चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा, धन, क्या चाहिए? रोगों से छुटकारा क्या चाहते हैं? सब कुछ मैं दूंगा। उनके पास जाएंगे तो सब छीन लेंगे आपसे। यस्याहम अनुग्रहामी हरिषे तद्धनम शरणे। अनुग्रह करते हैं जब भगवान कृष्ण तो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेते हैं। और यहां बलि महाराज को सर्वस्व छीन लिया। बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड का समर्पण हो गया। बलि महाराज के वचन के पक्के हैं, बहुत बड़े दानी हैं। स्वयं वो नारदो शंभो प्रहलादो भीष्म जनको बलिर भया सकीर भयम कुमारो कपिलो मनो। ये 12 महाजन हैं। बलि महाराज भी महाजन हैं, धर्म के अधिकारी हैं, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, शरणागति के आचार्य हैं। शरणागत कैसे किया जाए, कैसे करें शरणागत, आत्मनिवेदन, ये बलि महाराज से आप सीख सकते हैं। दो पग जमीन, कितना पग जमीन? 3 पग जमीन। लेकिन 2 पग जमीन जो है, 2 पग से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। 200 दिशाओं को नाप लिया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? केवल बलि महाराज का मस्तक। बलि महाराज ने अपने आप को नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया। तो मस्तक भी जब दे दिया तो उनका समर्पण पूरा हुआ। अपने आप को जब दे दिया उन्होंने, है ना, तो ये बलि महाराज का जो समर्पण है इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई। और इस कृपा के कारण जो है, जो कृपा उनको मिली थी बीज के रूप में, किससे? प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज जो है वो भी महाजन है। प्रहलाद महाराज ने उनको क्या दिया? ये भक्ति लता बीज दिया था। और आज भगवान वामन देव की कृपा से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, प्रेमानुकूर यानी कि भाव उदय हो गया, प्रेम उदय हो गया, कृपा सिद्धि मिल गई उनको। कोई बहुत अधिक साधना तो नहीं की थी प्रहलाद महाराज से, अगर उनका संपर्क हुआ भी, प्रहलाद महाराज के सानिध्य में रहे भी, लेकिन प्रहलाद महाराज के सानिध्य में रहते हुए बलि महाराज ने कोई बहुत कठोर साधना कुछ नहीं की थी उन्होंने, लेकिन क्योंकि उनका संपर्क प्रहलाद महाराज के साथ रहा, इस वजह से आज भगवान वामन देव जो है उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कृपा सिद्धि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा बाय भक्ति लता बीज। भगवान वामन देव ने उनके ऊपर कृपा की है, भाव उदय हो गया है, प्रेम उदय हो गया है। तो हम थोड़ा ये भाव के बारे में चर्चा करेंगे भक्ति राम संधु से कि ये भाव भक्ति होता क्या है। प्रेम प्रेमाकुर जिसको कहते हैं, भाव भक्ति के दो लक्षण बताए हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति राम संधु ग्रंथ में। क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग 19 अध्याय पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री का, जब अध्ययन करते हैं आगे के जो अध्याय है उसको भूल जाते हैं, असली घटना तो वहां से शुरू होती है 19वें अध्याय के बाद। खैर, भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमारा स्तर होगा उतना ही हमें समझ में आए। भगवद गीता भी ऐसी है, श्रीमद भागवत भी ऐसी है, चैतन्य चरितामृत भी ऐसी है। जो हमारा आध्यात्मिक स्तर होगा, कृष्ण भावना का जो हमारा स्तर होगा, उतना ही इन ग्रंथों को हम समझ पाए। यानी कि जो भाव की अवस्था में है वही समझ सकता है कि भाव है क्या, भाव भक्ति है क्या। ये जो भाव की अवस्था में है वही समझ पाएगा कि भाव भक्ति होता क्या है। अब जैसे श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, जब बनारस में शिक्षा दी दो बहने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथल भजन क्रिया तथा अनर्थवृत्ति से आज तथो निष्ठा अर्जिस तथा अथा आसक्ति तथो भावस तथा प्रेमा विदंशति साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भवेत क्रमा। प्रादुर्भवेत क्रमा का मतलब है सामान्य रूप से कोई भी साधक जो है उसको इस क्रम से गुजरना पड़ता है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ये सीढ़ियां बताई हैं श्री गुरु गोस्वामी ने। इन सीढ़ियों से प्रत्येक साधक को गुजरना ही होता है, बच नहीं सकते हैं इससे अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो श्रद्धा से प्रारंभ होती है भक्ति और वही श्रद्धा का कंडेंस फॉर्म है प्रेम। प्रेम श्रद्धा ही है, प्रेम श्रद्धा ही है प्रेम। लेकिन कौन सा प्रेम, कौन सी श्रद्धा है, कंडेंस्ड है बहुत ज्यादा। श्रद्धा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो प्रेम के रूप में प्रकट होती है, भाव के रूप में प्रकट होती है, प्रेमांकुर जिसको कहते हैं। प्रेम अंकुरित होता है और कैसे अंकुरित होता है इसकी अब हम चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ये भक्ति साहब सुधो का 17th चैप्टर है, 19वें अध्याय से पहले ही है। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि भी चित्तम आर्षनेय कृत असौ भाव उचित। मतलब शुद्ध सत्व जब तक हृदय में प्रवेश नहीं होगा भगवत प्रेम नहीं प्राप्त। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व का मतलब क्या है, शुद्ध सत्व का मतलब यहाँ पे मेटीरियल मोड ऑफ गुडनेस नहीं है, सत्व गुण नहीं है। शुद्ध सत्व का मतलब है जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है, राधिका रमण जी के अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है। यानी कि दो विशेष शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, उनकी कृपा होती है, एक है सम्यक शक्ति एक लादिनी शक्ति। सम्यक शक्ति और लादिनी शक्ति जब हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है तो फिर ये जो है प्रेम अंकुरित होता है, ये अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होता है, शुद्ध सत्व प्रवेश करता है। और फिर क्या होता है, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग। ये कैसा है, ये भाव कैसा है, प्रेम रूपी सूर्य का अंश, उसकी किरणें, प्रेम रूपी सूर्य की किरणें। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें आती हैं, इसी तरह से प्रेम रूपी सूर्य की जब किरणें हैं वो हृदय में प्रकट हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्रेमांकुर या फिर भाव उदय होना। भाव भक्ति का स्टेज बहुत एडवांस स्टेज है। जो हम साधन भक्ति में लगे हैं उसका उद्देश्य ये है कि हम भाव भक्ति में पहुंचे। वो साधना साधना नहीं है अगर आप वो भाव के सर पर नहीं ले आ सकते। साधना का उद्देश्य यही है कि आपको भाव भक्ति के सर पर लेके आए, नहीं तो साधना कुछ साधना में जो है गड़बड़ है। यानी कि हम जब साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति में लगे, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है। साधना भक्ति में गड़बड़ नहीं है, हमारी चेतना में कुछ गड़बड़ है, हमारे अभ्यास में कोई गड़बड़ है। तो ये प्रेम, ये क्या बता रहे हैं, प्रेम सूर्यांशु, प्रेम रूपी सूर्य अंश यानी कि उसकी किरणें, ये प्रकट हो जाती है हमारे हृदय में। शुद्ध सत्व लादिनी शक्ति और स्तंभ शक्ति। इसका यह है वास्तव में इस श्लोक का मुख्य लक्षण, यह मुख्य लक्षण है श्लोक का। प्रत्येक श्लोक का एक मुख्य लक्षण होता है, गौण लक्षण होता है, राइट। तो यह मुख्य लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व जो है हमारे हृदय में प्रवेश करता है, यह है वास्तव में मुख्य लक्षण। यानी कि भाव के स्तर पर कोई पहुंच गया है, इसका मतलब यह है कि उसके हृदय में शुद्ध सत्व जो है प्रवेश कर चुका है, राइट। तो ये यहां पर बताया गया है, और साथ में ही बताया गया है कि ये शुद्ध सत्व जो है कैसे प्रवेश करेगा, कृष्ण की कृपा से, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, उनकी कृपा से जो है ये शुद्ध सत्व हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, क्योंकि यहां पे बलि महाराज के ऊपर कृपा हुई है, भगवान वामन देव को सिद्धि मिल गई है, कृपा सिद्धि मिल गई है बलि महाराज को। तो यानी कि शुद्ध सत्व उनके हृदय में प्रवेश कर चुका है, संवित और लादिनी शक्ति जो है उनके हृदय में प्रवेश कर चुकी है, प्रहलाद महाराज की कृपा से, भगवान वामन देव की कृपा से। तो बलि महाराज को ये सिद्धि मिली, कौन सी सिद्धि मिली? कृपा सिद्धि, उनको कृपा सिद्ध। प्रभुपाद यहां कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो बलि महाराज जो है वो कृपा सिद्ध भक्त है, कृपा सिद्धि। और इसके अतिरिक्त यहां बात बताई गई है, रुचि भी चित्त माश्नय कृत असो भाव उच्यते। इसका मतलब क्या है? जब यह मुख्य लक्षण प्रकट हो जाता है, शुद्ध सत्व जब हृदय में प्रकट हो जाता है, तो क्या होता है? हमारे हृदय जो है वो नरम या कोमल हो जाता है, सॉफ्ट। जब तक हमारा हृदय कठोर रहेगा, हरि नाम का वारण नहीं ले पाएगा। कठोर हृदय वाला व्यक्ति जो है उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता है कृष्ण के लिए। तो यानी शुद्ध सत्व अगर उसके हृदय में प्रवेश किया है, उस भक्त के हृदय में, इसका मतलब क्या है? उसका हृदय क्या हो गया है, कैसा हो गया उसका हृदय? कोमल, बहुत ही कोमल, बहुत सॉफ्ट। क्योंकि ये भक्ति ऐसी चीज है, ये हृदय जब तक कोमल नहीं होगा, भक्ति देवी जो है हमारे हृदय में वास नहीं करेगी। इसलिए बताया, भागवत बताया गया है, जब हरिनाम का कोई चारण करता है, ऐसा भक्त जो क्या करता है, वो रोता है, हंसता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी उसके शरीर में कंपन होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंठ उसका गदगद हो जाता है, क्योंकि उसका हृदय क्या है, वो कोमल हो चुका है, शुद्ध सत्व हो चुका है। जैसे ही कृष्ण के बारे में सुनना शुरू करेगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह है भजन का प्रभाव। भजन करते करते क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे साल बीतते हैं, हमारे हृदय जो है वो कोमल होना चाहिए। अगर कठोर हृदय ही बना हुआ है 20 साल 25 साल के बाद भी, इसका मतलब यह है कि साधना जो हमने की है, साधना का कोई असर पड़ा ही नहीं हमारे हृदय में। हृदय कोमल क्यों नहीं हो रहा है हमारा? कोमल का मतलब यहां पर, हृदय कोमल होने का मतलब है हृदय में अनुकंपा, यानी कि दया, यानी कि कृपा, हृदय में जो है करुणा जागृत होनी चाहिए। किसके लिए? संपूर्ण जीवात्माओं के लिए हृदय में दया होनी चाहिए। हमारे एक भक्त है, बहुत उनके हृदय में दया है। जब भी हम किसी के बारे में बोलते हैं तो उसके लिए वो सपोर्ट करके दयावश जो है वो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये हृदय में दया प्रकट होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे हृदय में जब दया होती है, हृदय जब कोमल होता है, वहां भक्ति देवी जो है वास करती है। वहां पे नाम का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, श्रवण कीर्तन का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। तो शुद्ध भक्तों के संग में रहकर जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, साधना भक्ति में लगते हैं, सेवा में लगते हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, इस भजन के प्रभाव से हमारा हृदय जो है वो कोमल हो जाएगा, नरम हो जाएगा। यानी कि शुद्ध सत्व हृदय में प्रवेश करे, उसके लिए हमें एक क्या ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, एक फ्लोरिंग करनी पड़ती है, यानी जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है, राइट। तभी तो सिंचन होगा, तभी तो फसल उगेगी, तभी तो फल फूल निकलेंगे उसमें से। कैसे निकलेंगे? क्योंकि जमीन जब उपजाऊ होती है, बंजर जमीन में फसल नहीं उगाई जाती, बंजर जमीन में भक्ति देवी वास नहीं करती है, यानी बंजर हृदय में। तो कोमल जब हृदय होता है शुद्ध सत्व के प्रभाव से क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो कोमल हो जाता है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो यहां बताया गया है कि हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, ये जो है इसका गौण लक्षण है, भाव भक्ति का गौण लक्षण। और फिर क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, क्या बताया उन्होंने, कृत असौ यानी रुचि भी चित्तम आश्रय, रुचि भी, रुचि प्रकट होती है। तीन प्रकार की रुचि, तीन तरह की रुचि जो है प्रकट होती है इस अवस्था में, जब भाव की अवस्था में पहुंचते हैं, शुद्ध सत्व जब हृदय में प्रवेश करता है तो उस समय रुचि जो है तीन तरह से प्रकट होती है। पहला क्या बताया यहां पे, प्राप्ति अभिलाष। प्राप्ति अभिलाष का मतलब है कि अभिलाषा है कृष्ण को प्राप्त करने की, प्राप्ति अभिलाष। और दूसरा बताया गया है अनुकूल अभिलाष। अनुकूल अभिलाष का मतलब यह है अनुकूल भाव से हम कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तरह तरह की सेवाएं करके, अनुकूल अभिलाष। और तीसरा बताया गया है सौहार्द अभिलाष, यानी कि बहुत करीब जाना चाहते हैं कृष्ण के, हम उनके हृदय के करीब जाना चाहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है, ये रुचि, इस प्रकार की रुचि तीन तरह से जो है प्रकट होती है। जब हृदय जो हमारा क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है, यानी कि ये क्या है, ये गौण लक्षण है भाव भक्ति का। पहले हमने क्या बताया, मुख्य लक्षण बताया, मुख्य लक्षण क्या बताया हमने, मुख्य लक्षण क्या बताया पांचने प्रभु, शुद्ध सत्व विशेषा। शुद्ध सत्व जो है हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो उसका मतलब जो है अब हम, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होने वाला है, हम सिद्धि की तरफ बढ़ने वाले हैं, स्वरूप सिद्धि होने वाली हमारे। और ऐसे में श्रील प्रभुपाल ने लिखा उपदेशावृत के तात्पर्य में भी, प्रभुपाल कहते हैं कोई जब भाव की अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर माया उसको छू नहीं सकती, माया के चुंगल से आप बाहर निकल आते हैं, माया का कार्य पूरा हुआ, क्योंकि आपको अब क्या मिल गई है, सिद्धि मिल गई है, आपका प्रेम अंकुरित हो गया है कृष्ण के लिए। तो जब तक प्रेम अंकुरित नहीं होता है तब तक खतरा है, जब तक हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हैं तब तक खतरा बना रहेगा, संभावना है। तो ये यहां पे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और उसके अलावा ये बताया गया कि भाव जो है साधना के द्वारा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, साधना भक्ति के द्वारा। लेकिन याद रहे ये ना सोचें क्योंकि मैं साधना कर रहा हूं इसलिए मुझे भाव भक्ति में मौका मिल जाएगा पहुंचने का। साधना भक्ति जो है केवल एक क्या ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम ये कृष्ण को दिखाना चाहते हैं कि हम भक्ति में हमारी रुचि है, भक्ति हम करना चाहते हैं। लेकिन साधक निर्भर है बहुत किसमें, गुरु की कृपा पे और शुद्ध भक्तों की कृपा पे, कृष्ण की कृपा पे निर्भर है ये साधना। तो यह बताया गया है कि भाव की अवस्था में दो तरीके से पहुंचा जाता है, एक है वैदिक साधना और एक रागानुगा साधना। नारद जी जो है वो वैदिक साधना के माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त हुई, भाव की अवस्था में पहुंचे। जैसा नारद जी के बारे में जानते हैं कि चार कुमार, चार जो महाभक्ति वेदांत आए थे और किसके घर पे रुके थे, एक आश्रम में आकर रुके थे, जहां पे वो नारद जी की जो माँ है वहां सेवा कर रही थी। तो चार महीने रुके थे वहां पे, चार महीने लगातार उन भक्ति वेदांतों से नारद जी ने जो है कृष्ण कथा का श्रवण किया। भाव को विकसित करने का एक और तरीका बताया श्री गोस्वामी ने, वो ये है कि ऐसे शुद्ध भक्त जिनके हृदय में भाव है उनसे जब हम श्रवण करते हैं कृष्ण कथा का तो हमारे हृदय में भी क्या होता है, प्रारंभ में तो भाव का आभास होता है और धीरे धीरे क्या होता है, हम भाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति साहब से दो बजे पांचांग भक्ति का वर्णन किया है, साधु संगे नाम संकीर्तन भागवत श्रवण श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवन, ये पांचांग भक्ति है। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पांचांग भक्ति जो है इतनी प्रभावशाली है कि एक कनिष्ठ भक्त भी अगर इसका अभ्यास करता है तो उसको भी भाव का आभास होता है, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया से हो। ये इतना प्रभावशाली नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, विग्रह की सेवा उनका दर्शन करना, ब्रज में रहना या मंदिर में रहना, ये पांचक भक्ति में क्या होता है? भाव का आभास हो रहा है। अगर भाव का आभास भी नहीं हो रहा है पांचांग भक्ति करते हुए, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपराध हो रहा है। आभास भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? फिर सिंपल सी बात है, अपराध हो रहा है। संकीर्तन में भाव का आभास होना चाहिए, भाव श्रवण में भाव का आभास होना चाहिए। कम से कम इस स्तर पर तो पहुंचे हम लोग। तो इस तरह से जो है नारद जी जो है वैदिक साधना के उदाहरण है, और राग मार्ग की साधना में रागानुकार साधना में उदाहरण देते हैं पद्म पुराण से। एक स्त्री का जिसका नाम था चंद्रकांति गोपी, चंद्रकांति गोपी जो है वो गोपी भाव विकसित करना चाहती थी। रागात्मिका जो भक्त है विशेष रूप से जो गोपियां हैं उनके अनुगत्य होकर गोपी का भाव जो है विकसित करना चाहती थी, और इच्छा की उन्होंने कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के विग्रह के समक्ष वो नृत्य करें। चंद्रकांति गोपी जो है पूरी रात जो है नृत्य करती रही, पूरी रात। झांसी में श्रील प्रभुपाद जी जो है जब वहां रह रहे थे वहां एक मंदिर में गए, और प्रभुपाद जी भी पूरी रात वहां पे विग्रह के सामने प्रार्थना करने लगे, नृत्य कर रहे थे और जमीन पे लौट रहे थे। प्रातः काल उन्होंने क्या देखा, उनके गले में बहुत लंबी माला है जो चरणों तक थी। प्रभुपाद जी क्योंकि भाव वेश में नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और ऐसे करते करते वो मूर्छित हो गए या फिर विश्राम में चले गए। तो जब उठे प्रातः काल उन्होंने क्या देखा, उनके गले में हार है। तो चंद्रकांति गोपी ये पूरी रात वह नृत्य करती रही कृष्ण के सामने, कृष्ण के विग्रह के सामने। तो यह रागमार्ग की साधना, रागानुगा साधना से भाव उत्पन्न होता है तो ब्रज में प्रवेश करते हैं, और वैदिक साधना से जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहां प्रवेश करते हैं? वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। तो साधना जो है उसका उद्देश्य है कि हम भावभक्ति में आए, और इसके अतिरिक्त यह बताया गया है, यह तो साधना की बात की गई है, और इसमें शुद्ध भक्तों के संग प्रभुपाद ने भक्ति अर्थशास्त्र शुद्ध में एक आय शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों के संग में रहने का मतलब है वहां वैदिक साधना में लगते हैं या साधना भक्ति में लगते हैं। और दूसरा जो बताया गया है, दूसरा एक और तरीका है जिससे भाव उत्पन्न होता है। सामान्य रूप से जो तरीका क्या है, सामान्य रूप से जो प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, साधना भक्ति। लेकिन एक विशेष एक कृपा होती है, जैसे बलि महाराज के ऊपर यहां कृपा हुई है, इसको कहते हैं कृपा सिद्धि। तो कई तरह के भक्त होते हैं, साधना सिद्ध भक्त होते हैं और नित्य सिद्ध होते हैं जो भगवान के धाम में नित्य परिकर हैं, जिनके ऊपर माया का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे माता यशोदा, नंद महाराज, ललिता विशाखा, ये नित्य सिद्ध परिकर हैं, राइट। और साधना सिद्ध है यानी कि हम बद्ध जीव साधना करके हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। और एक कृपा सिद्ध, कृपा सिद्ध का मतलब है जैसे बलि महाराज है उनके ऊपर कृपा हो गई, प्रहलाद महाराज है इनके ऊपर भी कृपा हो गई, नारद जी की कृपा हो गई, बलि महाराज के ऊपर कृपा हो गई। तो ये कृपा दया, कृपा जो कहते हैं, कृपा दृष्टि इसको कहते हैं। ये तीन तरीके से बताया है श्री रूप गोस्वामी ने, तीन प्रकार से जो है कृपा प्राप्त होती है। एक है वाचिक, एक है दर्शन दान, एक है हार। वाची का मतलब यह है कि कह के आशीर्वाद देना बोलकर। तो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद पुराण में आता है कि उन्होंने नारद जी को आशीर्वाद दिया ये कह के कि मेरी इच्छा ये है, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जो है भगवत प्रेम प्राप्त करें, दिव्य आनंद का रसवासादन करें, दिव्य स्थिति में आप पहुंचे और कृष्ण के लिए आप प्रेम उत्पन्न करें। तो किसने आशीर्वाद दिया था, ये नारद पुराण में दिया है, कृष्ण ने इस तरह से आशीर्वाद दिया था नारद जी को। तो ये जो आशीर्वाद है, ये जो आशीर्वाद इसको कहते हैं वाचिक, बोलकर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या बोला, कृष्णेर मति नस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो। तो शुद्ध भक्तों के बाद हम जाते हैं, वैष्णव के बाद जाते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, कृपा करिए, कृपा करिए वैष्णव ठाकुर, कृपा करिए गुरुदेव, कृपा करिए। बाबा जी महाराज के पास भी एक ग्रस्त आए थे श्री धामायापुर नवदीप में, और उनसे भी यही कहा कि बाबा जी महाराज हमारे पर कृपा करिए, कृपा करिए, आप हमारे घर चल के रहिए। बोलते हैं कि मैं क्या कृपा करूं, मैं आपके घर जाके क्या करूंगा, आप यहां आ जाओ, सब छोड़ के, सब छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, घर छोड़ दो, मेरे साथ आओ, भजन करो, हरि नाम लो, ये है कृपा। तो वो भाग गए। प्रभुपाद से मिले थे, एक व्यक्ति ट्रेन में मिला था, और प्रभुपाद से उसने कहा कि प्रभुपाद स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने कहा इनकी तरह बन जाओ, बिकम लाइक देम, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। तो प्रभुपाद जब बंगाली मार्केट में थे, एक बिजनेसमैन आया था, और बिजनेसमैन जब आया श्रील प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री जयपुर में है, आगरा में है, इधर है, उधर है, जबलपुर में है, बहुत जगह मेरी फैक्ट्री है, मैं बिजनेस करता हूँ, इतना धन कमाता हूँ, लेकिन एक बात है स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे पास सब कुछ है, धन है, जायदाद है, घर है, मकान है, गाड़ी है, नौकर है, सब है मेरे पास, संपत्ति भी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, रात को मैं क्या करूँ। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा करो, ये सब कुछ मुझे दे दो, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये है कृपा, ये है श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा। प्रभुपाद ने कहा कि आप सब कुछ मुझे दे दो, आपको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ये आप मुझे दे दोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर प्रभुपाद ने वही वहां पे बैठे हुए थे असिस्टेंट, आप पता तो पूछो शायद, प्रभुपाद ने कहा टेक योर एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर। नो स्वामी जी, नहीं 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 स्वामी जी, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा खुद, एड्रेस देने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ जाऊंगा आपके पास। तो प्रभुपाद ने कहा आप तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हम भी आपके पास आना चाहते हैं, इनका लीजिए एड्रेस। तो फिर दे दिया उसने, एड्रेस भी दिया, अपना नंबर भी दिया, फोन नंबर भी दिया। तो ये कृपा है, इसको कहते हैं कृपा। कृपा एक बहुत बड़ा है, देखिए कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा जो है, जैसे प्रभुपाद ने सुना होगा, प्रभुपाद ने व्यास आसन से होते होते कहा कि 70% प्योरिटी इज इनफ, 70% पवित्रता पर्याप्त है भगवान के धाम में जाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम 70% ही ट्राई करें, हमारा प्रयास 100% का होना चाहिए, उसमें अगर कमी रह जाएगी तो क्या होगा, योगक्षेमम वहामि हम, ये है कृपा। अगर हम समर्पित भाव से सेवा करते हैं, थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है वो कमी पूरी कर दी जाएगी, ये कृपा है शुद्ध भक्तों की। तो प्रभुपाद जो है उन्होंने कृपा की। एक आए थे, हाँ दिल्ली में एक और आए थे व्यक्ति, उनकी उम्र थी 60 साल की, बंगाली मार्केट या बंगाली मार्केट में आए थे, उनकी उम्र 60 साल की थी। आत्मतत्व प्रभु जो है बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ, उनसे दीक्षा कैसे ले सकते हैं, तो पहली बार आए थे। उन्हें कहा कि दीक्षा लेना है तो आपको कम से कम 6 महीने या मंदिर में आके सेवा करनी पड़े। उन्होंने अपना पांव दिखाया, उनका पांव दोनों सूजा हुआ था, बोलते देखिए मेरा पांव सूजा हुआ है, मैं कैसे मंदिर में आके सेवा कर सकता हूँ, मुझे एक बार आप दर्शन दिला दीजिए, प्रभुपाद जी से मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप शाम को 4 बजे आइए, उस समय प्रभुपाद दर्शन देते हैं, और खाली हाथ मत आइएगा, किसी साधु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो वो आए शाम को, नारियल और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत धोती और ये सब एक प्लेट में रख के लेके आए थे। तो आत्मतत्व ने कहा ऊपर है श्रील प्रभुपाद, आप जाके मिल लीजिए। तो प्रभुपाद से जाके बोले कि प्रभुपाद मैं महामंत्र का जप करना चाहता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का। प्रभुपाद ने कहा कौन रोक रहा है आपको महामंत्र का जप करने से, ये लो कहाँ है आपकी माला। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उस माला में एक माला पूरा जप कर लिया प्रभुपाद ने, इसको ऐसे जब करना है। प्रभुपाद करते गए एक माला पूरी हो गई। करने के बाद प्रभुपाद कहते हैं ये लो आज से तुम जब करना शुरू करो, और वो व्यक्ति जो है फिर घर चला गया। आत्मतत्व प्रभु कभी कभी जाके पूछते थे, उनसे मिलते थे, जब वो बहुत बीमार हो गए तो आना उन्होंने बंद कर दिया था। एक हफ्ता रह गया था केवल, समझ लीजिए वो शरीर छोड़ने वाले थे, बहुत ही बीमार थे, बेड रिडन हो गए थे। उनके सामने पलंग के सामने शिल प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ था, अभी दीक्षा नहीं हुई थी, वो तो प्रभुपाद ने माला दे दी करके, मतलब एक तरह से दीक्षा तो हो गई लेकिन ऑफिशियली नहीं हुआ, फॉर्मली नहीं हुआ था दीक्षा। एक हफ्ते बाद पता चला कि वो शरीर छोड़ चुके हैं। और जब घर गए तो क्या देखा उन्होंने, उनके घर वालों ने बताया कि इनके हाथ में माला थी, ये महामंत्र का जप कर रहे थे, सामने प्रभुपाद जी को देख रहे थे, प्रभुपाद जी को देखते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। यह है कृपा, यह श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। देखिए अंत काल में जो है हरिनाम लेने का अवसर मिल गया उस व्यक्ति को जिसने जो है कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली और जिसने कभी दीक्षा नहीं ली। इसी तरह से पीएफ सेठी जी बंबई में थे, सेठी जी वहां पे बॉम्बे में टेम्पल बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भक्त लोग जो है ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां बड़े बड़े मच्छर, मोटे मोटे मच्छर काटते हैं इनको रात को, इनके पास रहने की ठीक से जगह भी नहीं। उन्होंने सोचा कि बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर और मैं ऐड करके एक फ्लोर पूरा भक्तों को दे देते हैं रहने के लिए। तो वो बनवा रहे थे और प्रभुपाद जी से मिलने की इच्छा हुई, उनका पूरे शरीर में धूल जमी हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी मैं प्रभुपाद से जरूर मिलूंगा जाके। प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद अभी ये काम चल रहा है, भक्तों की रहने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद ने कहा कि आप भक्तों के लिए यहाँ पे आश्रम बना रहे हैं रहने के लिए, राधा राज बिहारी जो है आपके लिए घर बना रहे हैं गोलोक धाम वृंदावन में। सेठी जी ने कहा कि स्वामी जी, गुरु जी, गुरु जी कहते थे वो, गुरु जी मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, पापी आदमी हूँ, विषयों में लगा रहता हूँ, बहुत अधम हूँ, मैं कहाँ से धाम जाने वाला हूँ कृष्ण के पास। प्रभुपाद ने कहा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद ने कहा आई विल सी दैट यू गो बैक टू कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा पीएस सेठी जी को, और सेठी जी कभी दीक्षा ली नहीं थी, उन्होंने भी फॉर्म लिया। प्रभुपाद उनके घर गए थे एक बार, बहुत बीमार थे, ही वॉज बेड रिडन, और उन्होंने गले में पट्टा वट्टा लगाया हुआ था, मतलब उनके शायद वो भी हो गया था, स्पॉन्डिलाइटिस भी था, और तो बेड में लेटे हुए थे काफी दिन से, दवाइयां खा रहे थे। प्रभुपाल को देखकर बोले अरे गुरुजी आप यहां पे हमारे घर। और प्रभुपाल कहते हैं कि आपके घर का नाम वृंदावन है, सन्यासी कहां जाएगा, वृंदावन ही तो जाएगा। तो प्रभुपाद भक्तों के साथ वहां पहुंचे, 6 घंटे लगातार प्रभुपाद ने कीर्तन किया वहां पे उनके घर पे। और प्रभुपाद कहते हैं ये पट्टा वट्टा हटाओ, ये सब बंद करो, कल मंदिर आ रहे। वो चल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें कहा कि प्रभुपाद मैं मंदिर कैसे आ सकता हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता हूं, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूं, भक्त आएंगे कल गाड़ी लेके आप आ जाना। अगले दिन भक्त लोग आए गाड़ी लेके और सेठी जी को उठाया और गाड़ी पे बिठाया। जानते हैं क्या हुआ चमत्कार, ये है चमत्कार। जैसे ही वहां मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचते ही क्या हुआ जानते हैं, सेठी जी को जैसे नीचे उतारने लगे सेठी जी चलने लगे। प्रभुपाद जी की कृपा से असंभव कार्य भी जो है वो संभव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कृपा सिद्धि। हम तो आज के समय में देखते हैं कृपा सिद्धि, दर्शन दान, दर्शन दान। जैसे कि बता रहे जंगल प्रदेश के जो लोग थे, उस वहां जंगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को दर्शन दिया और दर्शन से जो है उनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, भाव उदय हो गया। चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते थे पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां गए जो भी उनका दर्शन करता था, जिससे भी वो संकीर्तन कराते थे, उन सबके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता था। ये है दर्शन दान। जैसे सोने शचिनंद महाराज का पता होगा आपको, किस तरह से वो इस्कॉन में आए, वो जर्मनी में रहते थे तो लंदन गए हुए थे, लंदन हीथरो एयरपोर्ट जो पहुंचे तो वहां पे पता चला कि प्रभुपाद एक स्वामी जी आ रहे हैं इंडिया से, और लंदन हीथरो एयरपोर्ट में बहुत उच्च स्वर में संकीर्तन हो रहा था, कई भक्त आए थे और वहां हरिनाम हो रहा, संकीर्तन हो रहा था। तो बाइबल में कहीं उन्होंने पढ़ा था कि क्या देखा कि एक व्यक्ति ने जो है जीसस को देखा और जीसस के चेहरे पर जब क्लो देखा, एफिलियंस देखा, तो उसकी आंखें जाती रही उस एफिलियंस के कारण। उनको लगा कि ये स्वामी जी आ रहे इंडिया से, ये भी ऐसे होंगे, वो डर गए और वहीं एयरपोर्ट में वो लेट गए। पता चला कि लॉन में एंटर करने वाले हैं प्रभुपाद, वो जमीन पे लेट गए, जैसे आर्मी में लोग लेट जाते हैं जब युद्ध होता है, बॉम्ब डालते हैं, तो उस तरह से लेट गए, यानी कि अनोइंगली उन्होंने प्रभुपाद को दंडवत कर दिया। और फिर लेकिन जब कीर्तन इतना जोर से हो रहा था प्रभुपाद जी के आने पर, तो धीरे धीरे वो उठे, और जो उठे तो उन्होंने क्या देखा, प्रभुपाद जी के चेहरे पर एक्चुअली उन्होंने एफएसएल देखा, चेहरे में इतना तेज देखा प्रभुपाद जी के। इसको कहते हैं दर्शन दान, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। प्रभुपाद जो है फिर उनको प्रभुपाद जी के पीछे पीछे गए, लंदन से जर्मनी आ गए और उन्होंने टेंपल ज्वाइन कर लिया। दर्शन करने मात्र से प्रभुपाद जी के वो भक्त बन गए, क्या पावर है देखिए। इसलिए जय धर्म भक्त ठाकुर कहते हैं कि जो महाभागवत होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, इनमें इतनी शक्ति होती है कि जिसमें सुकृति नहीं भी है उसमें सुकृति डालकर वो श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर मध्यम अधिकारी भी अगर भक्त है कोई, तो वो भी अश्रद्धालु को नाम की महिमा का प्रचार नहीं कर सकता, उसको भी नाम अपराध लगे अगर करेगा। लेकिन महाभागवतों के लिए बताया गया है, जय धर्म भक्त ठाकुर कहते हैं महाभागवत के बाद इतनी पावर होती है कि वो सुकृति डाल देते हैं, श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं, फिर नाम की महिमा बताते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि सुकृति मैंने दी है, आपके पास कोई सुकृति नहीं थी, और ये फैक्ट है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक चमत्कार जो किया है 11 वर्ष के अंदर, ये दर्शन दान से भी किया है। जो उन्होंने दर्शन दिया लोगों को, सामान्य लोगों को, प्रभुपाद जी का दर्शन करते ही करने मात्र से लोग जो है भक्त बनने लगते थे। ये महाभाव की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा है। दर्शन दान वाचिक रूप से, और हार्द, हार्द का मतलब है हृदय से। प्रहलाद महाराज को हृदय से जो है आशीर्वाद दिया था, किसने, नारद जी ने, कि ये महाभागवत बने, इसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो। माता कयाधु के घर में थे प्रहलाद महाराज लगभग 36,000 साल, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई साधना तो नहीं की, राइट। लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से, हार्द, हार्द का मतलब हृदय से, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कृष्ण ने हृदय से आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं निकल रहे थे माता के गर्भ से, और भगवान कृष्ण को द्वारका से लेके आए थे वेद व्यास जी। उन्हें कहा कि आप बाहर निकलिए, आप अंदर क्या कर रहे हैं, चलिए चलिए बाहर आइए। उनको डर लग रहा था बाहर आने में कि माया का प्रभाव ना पड़े मेरे ऊपर, लेकिन ये हार दी उनकी इच्छा कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो परम रसिक बने और भागवत कथा करें। स्वाभाविक रूप से जो है उनके हृदय में भागवत प्रेम जागृत हो गया था, ये भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ था। लेकिन प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो कृपा सिद्धि होती है ये अनकॉमन है, सामान्य रूप से होता नहीं है ऐसा। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में ऑनरी नेम डिग्री करके लगभग नहीं होता। हमारे देश के राष्ट्रपति जो है उनको मिला था ये ऑनरी नेम डिग्री, राइट, डॉक्टर ज्ञानी उदयाल सिंह, उनको डॉक्टर की डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई थी। इसको कहते हैं कृपा सिद्धि, यानी कि बिना पढ़े स्कूल में, कॉलेज में आपको जो है डॉक्टरेट डिग्री मिल जाती है। यह है वास्तविक कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि का मतलब यह है, कितनी बड़ी बात। लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में शायद है नहीं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम साधना जब करते रहते हैं और सेवा जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, इन शुद्ध भक्तों की कृपा होगी। तो साधना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसमें भी कृपा की आवश्यकता है। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है, गुरु की कृपा की आवश्यकता है। दर्शन दान, राधिका रमन जी का दर्शन कर ले कोई अगर, उनके दर्शन से भी हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। कब कृपा दृष्टि कर दें आपके ऊपर, कब आपको देख ले। जैसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमें गरुड़ जी के पास खड़े होकर करना चाहिए। क्यों? जैसे महाप्रभु करते थे गरुड़ जी के पास खड़े होके जगन्नाथ जी का दर्शन, क्यों जानते हैं? वो कहते हैं कि जगन्नाथ जी हमेशा गरुड़ जी को देखते रहते हैं, अगर मैं निकट होकर मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन वहां से करूंगा तो मुझे भी देख लेंगे, तो इस तरह से मुझे भी कृपा मिल जाएगी जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी तो अपने शुद्ध भक्तों को ही देखते हैं ना, सबको थोड़ा देखते हैं। लोग तो बहुत सारे आ रहे दर्शन करने के लिए, लेकिन सबके ऊपर नजर सबके ऊपर नहीं पड़ती जगन्नाथ जी की। किनके ऊपर पड़ती है? जिनका हृदय जो है निर्मल है, जिनके हृदय में शुद्ध सत्व प्रवेश कर चुका है, भगवान को दर्शन देते हैं, दर्शन दान देते हैं, उनको देखते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है कि वहां लिखा है कि वैकुंठ से भगवान श्री नारायण मधुबन गए ध्रुव महाराज का दर्शन करने के, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने गए ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की भक्ति देकर, उनकी तपस्या देकर जो है भगवान भी पिघल गए, उनका हृदय पिघल गया। तो भगवान जो है दर्शन लेने आए अपने भक्तों का। जैसे प्रभुपाद जब एक बार हरिनाम हुआ था लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, और वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या उन्होंने देखा कि नारद जी जो है बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद देखकर मुस्कुराने लगे ऊपर देख के। प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद आप ऊपर क्यों देख रहे हैं और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चलिए प्रभुपाद ऊपर देख के चलते थे लेकिन आज मुस्कुरा रहे थे प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा कि जानते नहीं, नारद जी देखो वहां खड़े हुए देख रहे हैं, इज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है देखकर कि ये मलेश और यावन कैसे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में लंदन में संकीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी देखने के लिए आ रहे हैं, संकीर्तन करते हुए भक्तों को देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसे हरिनाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। और कॉन्वे हॉल 1969 में प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे, बहुत कम लोग आए थे, और प्रभुपाद ने उसके बाद उनके भक्त शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद वी आर एक्सट्रीमली सॉरी प्रभुपाद, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, हमने तो पब्लिसिटी किया लेकिन बहुत कम लोग आए। तो प्रभुपाद ने कहा, कौन कहता है कि को लोग नहीं आए? ब्रह्मा वॉज देयर, नारद वॉज देयर। प्रभुपाद ने कहा तो लंदन में सो स्ट्रीट में प्रभुपाद ने ऑर्डर के बाद दो आसन लगवाए थे। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी जैसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज यहाँ पे आते हैं भक्तों का दर्शन करने के लिए, उनके लिए हमें आसन रखना चाहिए यहाँ। इसी तरह देखते हैं श्रील गौर गोविंद महाराज अमेरिका में एक टेम्पल में लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते जो है 10 बज गए और मंदिर खाली हो गया, कोई था ही नहीं। तो वहां के जो मंदिर के अध्यक्ष थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि महाराज नोबडी इज हियर, एवरीवन हैज लेफ्ट, कैन वी फिनिश द लेक्चर? महाराज का हू सेड देयर इज नो स्पेस इन द रूम, so many people are standing and sitting here, you don't see, the room is house full. Maharaj ne kaha tumhe dikhta nahi hai, pura room bhara hua hai. To kehne ka matlab ye hai ki aise shuddh bhakton ka darshan karne ke liye swayam bhagwan aate hain, bhagwan bhi darshan karna chahte hain apne bhakton ka, wo bhi dekhna chahte hain aake kaise sankirtan mein lage hamare bhakt. To ye hai sadhana karte hue jo hai jab hame kripa milti hai to us sadhana ke dwara hum siddhi prapt. यानी कि कुछ तो करना पड़ेगा हमें प्रयास उस कृपा के लिए, उस कृपा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रभुपाद तात्पर्य में जैसे लिख रहे हैं भागवत के तात्पर्य में एक जगह फोर्थ कैंटो में कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम उनके लिए सेवा में कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। तो ये परीक्षा यहां बलि महाराज की ले रहे हैं भगवान, पवन देव कितना समर्पण करने के लिए तैयार है, ये क्या क्या दे सकते हैं मुझे, संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पित करा दिया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया बलि महाराज ने, बचा ही नहीं कुछ उनके पास। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर, अर्पित हुआ पदे नंद किशोर, अपना मन अपनी वाणी अपना घर सब कुछ सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं मैं। समर्पण जितना अधिक होता जाएगा उतना अधिक हम कृष्ण प्रेम के नजदीक पहुंचते जाएंगे। समर्पण हम सबको करना है, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, समर्पण। शुक्राचार्य जैसे जो गुरु हैं तथाकथित, वो समर्पण नहीं करने देते भगवान, वो शिक्षा देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा देते हैं। इसलिए ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है भागवत से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक तरह से देखा जाए तो बलि महाराज को बता रहे धर्म अर्थ काम उसकी चिंता करो महाराज, बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया उसको। धर्म प्रोजी तो कई मत्रो परमो निर्मत सराराम सतान, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है रिजेक्ट किया बलि महाराज ने, और उन्होंने किसको अपनाया, उन्होंने भगवान को अपनाया और भगवान के सेवा में शरणागत हो गए वो। तो ये शरणागति जो है बहुत ही प्रभावशाली हमारे लिए एक अस्त्र है जिसके माध्यम से हम कृष्ण की जो कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह से नारद जी ने कृपा की थी, हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया था मृगनारी को। मृगनारी जो है वो पशुओं की हत्या करता था, नहीं पूरी तरह से नहीं, अधबरा छोड़ देता था। नारद जी ने क्या बोला था मृगनारी को, अब क्या करिए, आप भजन करिए, केवल चिंता मत करिए, खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे, आप केवल भजन करिए। हृदय से आशीर्वाद दिया नारद जी ने उनको, हृदय से आशीर्वाद दिए। इसी तरह हम देखते हैं नारद जी कहां पे आए थे, महाराज चित्रकेतु के पास आए थे, अंगिरा मुनि के साथ, पर्वत मुनि के साथ महाराज चित्रकेतु के पास आए। क्या चाहिए आपको, महाराज चित्रकेतु ने क्या बोला, मुझे संतान चाहिए, 1 करोड़ रानियां हैं, 1 भी संतान नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, सब कुछ है मेरे पास, संतान चाहते हो पक्का। ये संतान जब शुद्ध भक्तों से आप अगर बहुत सुविधा भी प्राप्त करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो भी आपसे छीन लिया जाएगा धीरे धीरे। शुद्ध भक्तों से मांगने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बताते हैं सीधा मायापुर में भगवान नरसिंह देव के सामने प्रार्थना करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। अगर आपने भगवान नरसिंह देव को कहा कि मेरे अनर्थों की निवृत्ति कर दीजिए, तो पता नहीं किस तरह से आपके अनर्थों की निवृत्ति करेंगे वो। सावधान रहिएगा। तो इसलिए नारद जी ने कहा ठीक है, आपके बच्चे का नाम होगा हर्ष शोकी, हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण रहे, ये आशीर्वाद है नारद जी का, नारद जी का आशीर्वाद ही। इसी तरह से देखते हैं नरक और मणिग्रीव की कथा में देखते हैं नारद जी ने आशीर्वाद दिया उनको, निर्लज होके बेशरम होके मंदाकिनी में यहां स्नान कर रहे हो अप्सराओं के साथ, शर्म नहीं आती, जाओ पेड़ बन जाओ, तुम दोनों खड़े रहो आसौ विवशों के लिए नंद महाराज के घर पे। क्या आशीर्वाद दिया देखे नारद जी ने, ऐसा आशीर्वाद हमें मिल जाए तो क्या हो, मजा आ जाएगा। किसी ने कहा प्रभु ये शुद्ध संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए कई बार हमें नियम तोड़ने पड़ते हैं नलक पर मणिग्रीव की तरह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आशीर्वाद, ये हृदय से आशीर्वाद जब देते हैं ऐसे शुद्ध भक्त देते हैं। और अब देखते हैं कालिया कृष्ण जो है, कालिया नाग जो है, और ये है वो सब जो उनकी पत्नियां हैं वो सब सोच रही हैं इनके ऊपर ऐसी क्या विशेष कृपा हो गई है, आज इनको भगवान कृष्ण की चरण धूली मिल गई है। और एक तरफ क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी इतनी घोर तपस्या में लगी थी, क्या क्या उन्होंने नहीं किया कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और आज हम देखते हैं कि इसने क्या किया है कालिया नाग ने, कालिया ने कुछ नहीं किया, इसने इसे कोई साधना नहीं की है, जहर फैलाता गया यमुना जी में, ये कितने लोग इसकी वजह से मर गए, उसके बावजूद भी इसको मौका मिल गया, भगवान की चरण धूली जो है इसके फनों में, इसके मस्तक पे लग गई, कितनी बड़ी कृपा है देखिए कालिया के ऊपर। यहां पे यागी पत्नियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यागी पत्नी जो है वो ब्राह्मण के साथ लगी थी यज्ञ में, और कृष्ण बलराम आए थे उस समय वन में, भूख लगी थी उनको, उन्होंने कहा कि जाके कुछ खाने को ले आओ, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया, और भूल गए कि कृष्ण बलराम कौन है, और वो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपने सखाओं को कहा कि आप जाओ और पत्नियों से पूछो, उनकी पत्नियों से पूछो, उनकी पत्नियां जो है सरल है, उनका हृदय कोमल है, कपट नहीं है, वो समझ पाएंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, वो सब कुछ छोड़ के तुरंत ही वहां पे भाग के गई, किससे मिलने के लिए, कृष्ण बलराम से मिलने के लिए। क्या देखिए उनके हृदय का सरल था, एकदम कोमल था हृदय का, जैसे आप बता रहे शुद्ध सत्व कहां प्रवेश करता है, जहां हृदय हमारा कोमल होने लगता है वहां शुद्ध सत्व जहां हृदय में प्रवेश करेगा हमारा। और यही जो यागी पत्नियां हैं ये बड़ी भाग्यशाली थी, इनको भी कृपा मिली, कृष्ण की कृपा मिली, कृपा सिद्धि मिल गई, बलि महाराज को कृपा सिद्धि मिल गई, प्रहलाद महाराज को कृपा सिद्धि मिल गई, हमें नहीं मिलेगी, हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना के बलबूते पर हम कृपा की याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रोज प्रार्थना करें, राधा राधिका रमन के सामने आके गिड़गिड़ाए, हाथ फैला के रोए उनके सामने कि हमारे पर कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। तो ये है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। बात यह समझने की है कि हम बलि महाराज कितना समर्पण का भाव हमारे हृदय में आए, हम उनसे सीखे आत्मनिवेदन होता क्या है, और धीरे धीरे जब साधना में हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह का समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से कृपा होगी हमारे हृदय में भी, हमारे ऊपर कृपा होगी, फिर क्या होगा, प्रेम अंकुरित होगा कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? माइक।
कभी जैसे कि आपने बताया कि मध्यम अधिकारी भी अगर नाम की महिमा किसी को अभक्त को बताता है उसको भी अपराध लगता है, बट जैसे कि हम देखते हैं कि डिवोटीज आते हैं कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, तो वो मतलब सारे डिवोटीज जो प्रीचिंग करे जा रहे हैं दे आर ऑल आर नॉट उत्तम अधिकारी, तो मतलब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि हाउ दिस कैन बी।
थोड़ा धीरे पूछेंगे क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है अब यूं सेमिनार दे रहे हैं कोई किसी कॉलेज में। अब पूछिए क्वेश्चन दोबारा।
रोजी जैसे आपने बताया कि अगर कोई मध्यम अधिकारी भी हो अगर वो भी किसी को अभक्त को नाम की महिमा बताता है तो उसको भी नाम अपराध लगता है, बट हम देखते हैं जनरली कि डिवोटीज कॉलेज प्रीचिंग करते हैं और मतलब सभी को नाम बांटते हैं, हरि नाम लेने के लिए कहते हैं, तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं क्योंकि सारे डिवोटीज जो प्रीचिंग करते हैं दे आर ऑल आर नॉट उत्तम अधिकारी, हम कैसे इसको समझ।
नहीं, नाम अपराध अगर हमने कहा तो गलत कहा होगा। मध्यम अधिकारी जब है ऐसे लोगों का अवॉइड ही करते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं होती है और जो वास्तव में कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते हैं। आप जो कॉलेज प्रीचिंग करते हैं तो ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं होती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम ये समझें कि हम प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। प्रीचिंग कौन कर रहा है? प्रभुपाद कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी के फिलॉसफी को, प्रभुपाद जी ने प्रसिद्ध किया है फिलॉसफी को, उनकी किताबों को आगे रखते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा उनको देते हैं, इस तरह से जो है योग्य बनते हैं वो लोग। हम ये ना सोचें कि हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हमको क्वालिफाई कर रहे हैं, हम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद ही क्वालिफाई कर रहे हैं। ये फैक्ट है, ये एक एग्जैग्रेशन नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। प्रभुपाद ही उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, और प्रभुपाद की जब तक किताबें उनके पास नहीं पहुंचेंगी तब तक उनके ऊपर कृपा होगी नहीं, ये याद रखिएगा। आप भले कितना भी प्रीचिंग कर लो, प्रभुपाद को आपको देना ही पड़ेगा। यानी प्रभुपाद को देने का मतलब है जो प्रभुपाद ने फिलॉसफी प्रेजेंट की है बुक्स में वो फिलॉसफी देनी पड़ेगी, हम प्रभुपाद जी का एसोसिएशन देना पड़ेगा हमको, देन यू आर क्वालिफाइड, अदरवाइज हमारा कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हम क्या प्रीचिंग करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद को आगे रख के हमें प्रीचिंग करना है। और कुछ
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था अपने लेक्चर में कि जब व्यक्ति भाव की स्टेज पर होता है तो फिर माया उसे छू नहीं सकती, तो जैसे भागवतम में हम जड़ भरत की कथा आती है तो वो भाव की स्टेज में थे और उसके बाद भी फिर उनका जो है
पतन नहीं हुआ,
पतन हाँ एक तरह से
नहीं। पतन नहीं हुआ क्योंकि हिरण के शरीर में भी जो है वो साधु संतों के पास जाते थे, उस आश्रम में जाते थे जहाँ पे भक्त आते थे और भागवत कथा करते थे, वो हिरणियों के झुंड में नहीं थे। पतन का मतलब होता है जब आप इंद्र तृप्ति में लगते हैं, उनका कहाँ पतन हुआ। ये शिक्षाप्रद कथा है कि इस अवस्था में भी हमें जो है सावधान रहना चाहिए, ये समझाने के लिए कथा है। भरत महाराज का कभी पतन नहीं हुआ, नहीं तो हिरण के शरीर में फिर वो क्यों वहां पर कथा भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, भक्तों का संग करने क्यों जा रहे हैं, हिरणियों के साथ जाना चाहिए था उनको, उसे अलग ही सुख होता, भौतिक सुख। तब कैसे थे उनका पतन हुआ है, पतन नहीं हुआ उनका। और बताए
हरे कृष्ण। थैंक यू जी लेक्चर के लिए। फिर जैसे हमने बताया जो प्रभुपाद जी की बुक्स है नेक्टर डिवोशन भागवतम, वो अपने आपको उतना रिवील करती हैं जितना कि हम जिस स्टेज पे होते हैं, तो अपने स्टेज को हम कैसे बढ़ा सके ताकि जो बुक्स हैं वो हमको और ज़्यादा रिवील कर सके।
सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, गुरु की कृपा से यह होगा। सेवो मुखो ही जीवा दो स्वयं एव स्फूर्ति अदहा, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। जैसे हमने स्टोरी सुनाई थी आपको मदन मोहन मालवीय की, जो आए थे और भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आए, उन्होंने कहा कि हम मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ वेदांत सूत्र के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप भीतर जाइए, वहाँ हमारे जो पुजारी हैं उनसे पूछिए ये प्रश्न। तो भीतर जब गए तो पुजारी ने कहा हम बाद में उतर देंगे, पहले बर्तन आप साफ करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय जी ने बर्तन साफ किया और जो प्रश्न पूछना चाहते थे भक्ति सिद्धार्थ महाराज से, वो सारे प्रश्नों का उत्तर उनको मिलता गया सेवा करते हुए। तब भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने बोला मदन मोहन मालवीय को, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? उन्होंने कहा जब सेवा कर रहा था मुझे प्रश्नों का उत्तर मिलता जा रहा था। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा कि मेरे गुरुदेव बाबा जी महाराज वो अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे, लेकिन चैतन्य चरितामृत जब वो बोलते थे, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत के श्लोक उनकी वाणी में थे, वो अपना नाम लिखना नहीं जानते थे। क्योंकि वो क्यों ऐसा कर पाते थे? क्योंकि वो सेवोन्मुख थे। तो हम जब सेवा करेंगे भक्त्याम अभी भाई जाना आती, इसलिए भगवान गीता में कह रहे भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा ही जो है मुझे जाना जा सकता है। तो जितनी अधिक हम सेवा करेंगे, फिलॉसफी को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, धीरे धीरे क्या होगा सबको रिवील होगा। मैं इसलिए एक बार हमें याद है हमारे गुरु महाराज ने क्लास में बोला था, बाय सर्विंग भक्ति वेदांत यू बिकम भक्ति वेदांत। इसका मतलब ये नहीं आप प्रभुपाद बन गए, इसका मतलब ये है कि यू आर एबल टू रियलाइज द पोजिशन ऑफ भक्ति वेदांत। आपको भक्ति वेदांत के लेवल पर आप पहुंच जाएंगे बाय सर्विंग भक्ति वेदांत।
धन्यवाद प्रभु जी। साधना भक्ति का लक्ष्य आपने भाव भक्ति बताया, तो हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हृदय कठोर ना हो बल्कि कोमल हो?
हृदय हमारा कठोर होता है अपराधों के कारण, जितना अपराध करेंगे उतना हृदय कठोर होता जाएगा। नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध, सबसे भयानक वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध अधिक से अधिक करिए, आपका हृदय कठोर बनता जाएगा। हृदय कठोर हमारा बना ही हुआ है पहले से, कठोर हमारे अनर्थों के कारण, पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, पुण्य कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, चक्रवर्ती बात जैसे बता रहे हैं माधुरी कादंबनी में, ये सब हमारे हृदय को कठोर पहले से ही बना चुके हैं। और भक्ति में आने के बाद हम लोग अपराध करते हैं, अपराध उत्त अनर्थ जो विकसित करते हैं उससे हमारा हृदय और कठोर हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में सबसे खतरनाक है अपराध और उससे सबसे खतरनाक है वैष्णव अपराध, इससे हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाए। तो हृदय को सरल बनाने के लिए, कपट रहित बनाने के लिए हमें अपराधों से बचना पड़ेगा, नहीं तो ये जो अपराध हैं ये नए अनर्थ उत्पन्न करते हैं। भक्ति उत्थ अनर्था, भक्ति करते हुए ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं, तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय कोमल है, जिनका हृदय सरल है, ऐसे भक्तों का जब संग करेंगे तो हमारे हृदय भी निर्मल होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षा सिचे प्रणत भी भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्यम हृदय मिक्षिता संगम लभ्या। यानी जो भजन में विज्ञ है उनकी सेवा करो, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। सबका संग नहीं करने के लिए बोला रूप गोस्वामी ने, उन्होंने क्या बोला, अन्य निंदा आदि शून्य, जिनका हृदय अन्यों की निंदा से रहित है, ऐसे भक्तों का संग करो और ऐसे भक्तों की सेवा करो जो भजन में विज्ञ है, भगवत सेवा में तत्पर है, तब हमारा हृदय जो है वो निर्मल होगा, हमारा हृदय भी नरम होगा, हमारा हृदय भी जो है वो क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर हमारा हृदय कठोर ही बना रहेगा, पहले से ही कठोर है और कठोर बनता जाएगा हमारा हृदय। और ऐसे कठोर हृदय में हमारा जो है, हमारी भक्ति जो है आगे बढ़ेगी नहीं। और सबसे यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, और जितना अधिक हम समर्पण करते हैं, जितना अधिक हम सहन करेंगे, जितना हम सहन करेंगे उतना ही अधिक हमारा हृदय भी निर्मल होता जाएगा, हृदय हमारा कोमल होता जाएगा। तपस्या के माध्यम से, सहनशीलता से हमारा हृदय कोमल होता है, हृदय निर्मल होता है। लेकिन तपस्या हिरण्यकश्यप की तरह नहीं, गुरु को खुश करने के लिए तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या, ऐसी तपस्या जो है हमारे हृदय को निर्मल बनाएगी, हृदय को सरल बनाएगी, हृदय को कोमल बनाएगी, हृदय को नर्म बनाएगी।
महाभारत में मुझे एक क्वेश्चन डाउट है, महाभारत में कर्ण को है ना जो कृष्ण ने आके कमंडल कवच भी ले लिया था कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि है, उन्होंने कृष्ण ने ब्राह्मण के अवतार में आके उनका जो कमंडल है और उनका जो है वो ले लिए थे, लास्ट लास्ट में जब आए थे कुंडल लिए थे, वो जब उन्होंने कुंडल ले लिया था जब बाद में कर्ण को अर्जुन ने मारा था, ये भी वो एक कृपा जैसा होता है।
भगवान जो भी करते हैं कृपा ही करते हैं, भले देखने में लगे कि ये धोखा दे रहे हैं, जैसे बलि महाराज के लिए बोले छल दिया उन्होंने, भगवान वामन ने छला उनको बलि महाराज को, नहीं छल असी यद विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, नहीं तो बलि महाराज को छला एक्चुअली वास्तव में देखा जाए, लेकिन भगवान का छलना भी जो है वो पवित्र करने वाला है। सूर्य की किरणें जब मलमूत्र में पड़ती हैं वो मलमूत्र को शुद्ध करती हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो उसे पेट फाड़ता है लेकिन उससे मरीज को फायदा होता है। तो भगवान जब किसी को मारते भी हैं, असुरों को मारते भी हैं, तो उसका उद्धार करता है। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो गलत कर ही नहीं सकते। सूर्य की रोशनी सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। लास्ट क्वेश्चन, हार्द हृदय से आशीर्वाद देते, नारद जी ने आशीर्वाद दिया था प्रहलाद बालक को, हृदय से आशीर्वाद दिया था, नारद जी ने मृगरारी को आशीर्वाद दिया था, हृदय से आशीर्वाद दिया था, इसको कहते हैं हार्द, हृदय से आशीर्वाद देना।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने जैसे बलि महाराज का एग्जाम्पल था, तो बलि महाराज को मालूम था कि ये स्वयं विष्णु हैं और सब कुछ आपका छीन लेंगे, तो भक्ति में आने के बाद हमारी बहुत इच्छाएं होती है, इच्छाओं के साथ हम भक्ति कर रहे होते हैं, तो सब कुछ पता होता है कि भाई ये कृष्ण है कन्हैया है, हमारा हमारी चमड़ी भी उधेड़ लेंगे हमारी, तो समटाइम्स कुछ भक्त हैं वो भक्ति छोड़ के परम वैष्णव या देवी देवताओं की सेवा में लग जाते हैं, सब कुछ जानते हुए जानते पूछते हुए कि भाई आपकी चमड़ी उधेड़ लेंगे, तो क्या, और फिर वो बात आपस में करते करते कई बार दिल में ये बात आ जाती है कि, और फिर उनको उन चीज़ की प्राप्ति भी हो जाती है जब वो भक्ति छोड़ के वैष्णवों की या परम वैष्णव की देवी देवताओं की सेवा में लगते हैं, तो समटाइम्स फिर दूसरे भक्त को लगता है कि वाकई में कृष्ण चमड़ी उधेड़ने वाले हैं, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है, तो क्या उस भक्त का आपस में संग करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, किस तरह से उसको फिर समझें?
देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो भी असत्संग है, ऐसे देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं उनका संग करना भी असत्संग है, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, क्योंकि जय धर्म भक्ति ठाकुर ने बताया है अधिकांश वो देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं वो मायावादी होते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर देवी देवता को वो भगवान से स्वतंत्र मानते हैं और ये मानते हैं कि सब एक ही हैं, तो इस कारण से एक तरह से मायावाद का मिश्रण है उसमें, और ऐसे लोगों का संग करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे भक्ति के लिए वो हानिकारक, राइट? उनको आप बताइए कि भगवान को भोग लगा के फिर देवी देवता को दीजिए, इसलिए भक्तों ठाकुर ने कहा कि देवी देवताओं को जो अर्पित जो भोग होता है वो वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं, इसी कारण से
ऑलरेडी वो प्रभु जी सब जानते हैं और वो सब छोड़ चुके हैं, कर भोग लगा के सब कुछ करके छोड़ चुके हैं,
जो भी है अब तो देवी देवताओं की सेवा में लगे ना, और सत्संग है आपके लिए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, इनका प्रश्न है कि अभ्यास और वैराग से जो है भगवान से छुटकारा पा सकते हैं, भगवान गीता में बता रहे हैं, तो वैराग उत्पन्न होता है जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का जो परिणाम है वो है ज्ञान और वैराग। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयुत की, भक्ति परेशान भाव विरक्ति, भक्ति जब हम करेंगे तो विरक्ति अपने आप उत्पन्न होगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है कि जब इंद्रियों को भगवान श्री ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं, अपने इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है, देर आर टू साइड इफेक्ट्स, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, एक तो हमारे देहात्म बुद्धि से छुटकारा पाते हैं और दूसरा हमारे इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं दोनों चीजें होनी चाहिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए हमें और इंद्रियां हमारी शुद्ध होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कई साल होने के बाद भी, इसका मतलब भक्ति में कहीं कमी रह गई हमारी, क्योंकि भक्ति का परिणाम है। कॉम्बिनेशन पर यह डिपेंड करता है, इंडिविजुअल केस टू केस डिफर करेगा, उसके लिए आपका केस अलग से स्टडी करना पड़ेगा, इसको क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आपका सिचुएशन अलग है, इनका सिचुएशन अलग है। ये ब्रह्मचारी हैं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 9 बजे के बाद यहाँ से हिलते हैं और रात को भी कई बार लेट सोते हैं, कई बार सोते भी नहीं हैं, जो भी है। लेकिन इनका शेड्यूल आप नहीं फॉलो कर सकते, इनका शेड्यूल आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो इसलिए आपसे बात करके अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, क्लास में आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका सिचुएशन अलग है, आपका सिचुएशन अलग है। ये उठते हैं 3:30 बजे उठते हैं, 9 बजे से पहले हिलते नहीं यहाँ से। तो ऐसा आप कर सकते हैं तो आ जाइए, लेकिन आपका सिचुएशन अलग है तो इसलिए आपसे अलग से डील करना पड़ेगा। ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हम यहाँ। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।